सालरी साहब आप तैयार हैं?
कभी भी जिंदगी में इतनी तैयार नहीं थी।
ठीक है, अपनी पलकों को खोले बगैर मुझे बताएं कि क्या महसूस कर रही हैं।
रोशनी, डॉक्टर साहिबा, पलकों के पीछे रोशनी महसूस कर रही हूँ।
ठीक है, मैं आपकी पट्टी खोल रही हूँ। अब बहुत आराम से अपनी आंखें पूरी तरह से खोलें। क्या देख रही हैं?
समझ नहीं आ रहा। रोशनी बहुत ज्यादा है। एक चीज,
कोई बात नहीं, जल्दी ना कीजिए। आप आराम से आंखों को मजीद खोलिए।
लगता है मैं देख पा रही हूं, बस जरा सा।
रोशनी ज्यादा है, अजियत कर रही है।
जी डॉक्टर साहब,
परेशान न हो, मुझे बता सकती हैं कि ये कितने हैं?
ये मालूम नहीं, बस सिर्फ विक्ट्री की अलामत लग रही है।
वाह सालारी साहिबा, मजाक भी करती हैं आप। आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ कौन खड़ा है?
गीलान, सालारियों की खूबसूरत बहू, तुम्हारा चेहरा मेरे तसव्वुर से ज्यादा मेहरबान है। सालार, कितने बूढ़े हो गए हो।
मेरी बहन, इस मुद्दत में तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था, वक्त तो ठहरा नहीं था।
अच्छा सालारी साहिबा, यहाँ कौन खड़ा है?
हाय मेरे खुदा, मेरा बोला, यकीन नहीं आ रहा, अपने बाप से कितना मिलते हो। काश इस वक्त यहां होते।
मैडम सालारी, आपके लिए रोना अच्छा नहीं है।
ये रोने के आंसू नहीं है।
आंसुओं से आंखों पर प्रेशर आता है, रोना बंद नहीं करेंगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगी कि
आप जानती हैं मैं कितने सालों के बाद अपना बेटा देख रही हूँ।
जानती हूँ, लेकिन
नहीं नहीं जानती, कोई भी नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता कि इतने अरसे के बाद बेटे को देखने में कितना मजा आता है। मेरे बोला, आ गया हो मेरे खुदा, इतने साल मैंने कितना इंतजार किया, बहराम की कितनी याद आ रही है, बहराम आप देख रहे हैं हमारा बेटा लौट आया, पोलाद बेटा, बातें इतनी ज्यादा है कि मैं तो पूछना ही भूल गई कि तुम्हारी बहनें कहाँ हैं, उनको क्यों नहीं लाए, वो ईरान में नहीं है क्या?
मेरी बहनें, मैं तो सोच रहा था कि
क्या मेरी जान, बताओ।
मैं जी वो ईरान में नहीं है, तय पाया था कि पहले मैं आपको ढूंढूंगा फिर उसके बाद उनको बताऊंगा।
उनको देखने को कितना जी कर रहा है, उनकी आवाज सुनने को कान तरस गए हैं। फोन कर सकते हो उनको?
जी 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 हाँ जरूर।
अस्सलाम वालेकुम, मेहमान नहीं चाहिए?
वालेकुम सलाम, तुम कब लौटे?
बस थोड़ी देर पहले। अम्मी कहाँ हैं?
लेटी हुई हैं। फुलाद भी वापस आया है, जरूर बहुत खुश होगा, है ना?
नहीं, उसकी माँ का ऑपरेशन हुआ है। मैं जानबूझकर जल्दी आ गया ताकि फैक्ट्री को भी देख सकूं और वो भी एक दूसरे के साथ खूब मिले। बहरहाल मेरा रहना वहाँ अच्छा नहीं था। आतिफा, काश तुम वहाँ होती। बहुत ही अच्छी खातून है, नाबिना होने के बावजूद सरपरस औरतों की मदद करती हैं। सोचो, वो भी इस जमाने में।
हाँ।
थकी हुई हो?
हाँ, एक तरह से।
क्या खैर खबर, कुछ हुआ है क्या?
नहीं, इत्तेफाक से अम्मी के लिए एक अच्छी नर्स ढूंढी है।
अच्छा, तो तुम्हारी शक्ल ऐसी क्यों हो गई है?
कैसी हो गई है?
पिनोकियो की तरह जब झूठ बोलता है। क्या हुआ है?
कुछ नहीं। अरे भाई,
ईरज का मामला है?
नहीं मेरे भाई, वो मसला नहीं है। अलबत्ता तमाम मसाइल के ताने बाने किसी तरह ईरज जी से जाके मिलते हैं।
अच्छा, बता भी दो ना।
आजकल में मुझे पता चला है कि अम्मी अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजें छुपाती हैं। ये मुझे उनके सामान से मिले।
ये अम्मी के पास क्या कर रहा था?
ये बात अहम नहीं, जरूर अब्बू की अलमारी की दराज से निकाला होगा। बहरहाल उनके ये काम ज्यादातर शौरी नहीं है बल्कि इत्तफाकी है।
तो फिर
तुमने ये तहरीर पढ़ी? क्या तुम जानते थे कि ईरज ने कारखाने से अपना हिस्सा अब्बू को बख्श दिया?
मुझे जहां तक याद है, अब्बू कह रहे थे कि उन्होंने इशराक का हिस्सा खरीदा है और कागजात भी तैयार कर लिए थे।
लेकिन ये तहरीर तो कुछ और ही बता रही है।
चलो मान लेते हैं उसने अपना हिस्सा बख्श दिया। अरे उस जैसा बदजात इंसान, उसे किसी ने मजबूर तो नहीं किया था ना? अब्बू ने कोई पिस्तौल तो सर पर नहीं रखी थी ना?
मोहम्मद, इसकी तारीख पे जरा गौर करो। जानते हो किस टाइम की है?
आठवें महीने का पांचवां दिन, तो
यानी इशराक साहब की वफात के
तो
बाद
इशराक साहब की मौत के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले तो ईरज का कोई हिस्सा ही नहीं बनता था।
तुम समझे नहीं, इसकी डेट मेरे और ईरज की शादी से 6 महीने पहले की है। अभी नहीं समझे है ना? ये तहरीर बताती है कि क्यों अबू हमेशा कहते थे कि इतने रिश्ते आ रहे हैं तो ईरज ही क्यों, लेकिन बाद में अचानक राजी हो गए और कहने लगे कि ईरज समझदार लड़का है। अब समझ में आया कि ईरज को क्यों शादी की इतनी जल्दी थी, हत्ता कि अपने बाप की बरसी का भी इंतजार नहीं किया।
नहीं आतिफा, तुम्हें गलत फहमी हो रही है।
मैं मुसलसल खुद को यही समझा रही हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है। मोहम्मद अब्बू ने मुझे ईरज को बेच दिया था। अब समझ में आया कि ईरज क्यों सुलह सफाई पे इसरार कर रहा है, क्योंकि समझता है कि इस तरह तो दोनों तरफ से घाटे में रहा है।
नहीं, अब तुम बहुत ज्यादा बदगुमानी कर रही हो। तुम जानती हो कि मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, लेकिन अब भी मुझे यकीन है तुम्हें चाहता है।
नहीं, तुम जानते हो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वाकई में हम अब्बू के अमाल की सजा भुगत रहे हैं। अम्मी को क्यों ऐसी बीमारी लाहक होनी चाहिए, या हम दोनों क्यों इतने बुरे हालात में हैं? क्यों मोहम्मद?
हाँ तो मैं भी जानता हूँ कि अब्बू ने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बदगुमानी कर रही हो।
तुमने फुलाद की बहनों को देखा?
नहीं, असल में उनके माँ के मिलने की इतनी खुशी थी कि ये बात तो भूल ही गए हम लोग। क्यों, ये बात क्यों पूछ रही है?
जानती थी, अस्पताल में इस बात का पता चला।
किस बात का?
मोहम्मद, फुलाद की बहनें गुम हो गई हैं ना, मालूम है?
क्या, तुम्हें कहां से पता चला?
कहां से? मुझे मेहरबानों की बातों से पता चला। और हाँ, अम्मी जब डॉक्टर जहांगीर के क्लिनिक आई थी तो अचानक उन्हें कुछ याद आया और बोलने लगी, बच्चियां ज्यादा वाजे तो नहीं कहा, लेकिन फुलाद की बहनों पर जो भी मुसीबत आई है, मुझे यकीन है इसमें अब्बू का हाथ था।
आतिफा,
ये मसला घर के कागजात के मामले को भी हल कर देगा। मोहम्मद, अब्बू ने जिंदगी में बड़े दो मामले किए हैं, ये घर बहराम मर्जबान की बेटियों के बदले और ये कारखाना मेरे बदले।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, क्या खैर व खबर?
खबरें तो आपके पास हैं।
वो कैसे?
अनजान मत बनो सालार, मुझे बताओ क्या हुआ।
देखो बहराम, तुम हमारे घर के दामाद हो, तुम्हारी इज्जत अपनी जगह, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को भूल जाओ।
किस बात को भूल जाऊं?
बहराम, मेरे भाई इस वक्त मसला बच्चों के पोलियो के वैक्सीनेशन का और गांव की सेहत और सलामती का नहीं है, बात कुछ और है।
यानी मैं फजूल में दखल ना दूं?
बहराम, मेरे भाई, हम मुकावमत कर रहे हैं।
अच्छा?
हाँ, यही।
कितने साल, बताओ मुझे, और कितने साल अपने बाप के गुनाहों का बोझ उठाना होगा?
बस करो बहराम।
तुम बस करो, और कितने साल अपने बाप की वजह से एक गद्दार कहलाया जाऊंगा मैं? कितनी दफा कहूं कि मेरा अपने बाप के साथ कोई ताल्लुक नहीं, मैं अब तुम्हारी फैमिली का दामाद हूं। तुम मेरे और सौदाबा के बच्चों के मामू हो। फुलाद के पैदा होने के बाद तुम्हारे वालिद ने उसके कान में अजान दी, अब भी मुझ पर कोई भरोसा नहीं है।
किसी ने प्रेस के बारे में खबर दी है?
वही प्रेस जिसमें एलामिये छापे जाते
हैं। हाँ, वही।
और तुम समझ रहे हो कि ये मेरा काम था? सालार, मेरी आंखों में देखकर कहो कि ये काम मैंने किया।
बहराम, बात यह नहीं है।
अगर ये नहीं है तो फिर क्या?
हमें तुम पर भरोसा है। अगर ना होता तो इतने साल मेरी जिंदगी की सबसे अजीज फर्द के साथ जिंदगी ना गुजारते। सिर्फ
सिर्फ क्या?
बाबा यूनुस ने कहा है, उन्होंने तुम्हारे हटने का कहा है, धमकी दी है, जो भी तुम्हें ग्रुप में लाएगा उसे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा।
यानी इतने सालों के बाद हाजी यूनुस, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरी बहनें गुम हो गई हैं?
मैं नहीं जानता था बेटा। सुदाबा की तरह ये समझ रहा था कि ईरान से चले गए हैं और सब एक साथ हो।
मुझे देख के तो समझ गए होंगे, जब मैंने पूछा तो बताया क्यों नहीं।
मैं इतने साल बाद अपनी माँ से मिलने की खुशी को एक बुरी खबर से खराब नहीं करना चाहता था।
तो अब क्या करेंगे? अगर अम्मी उनसे बात करना चाहेंगी, अगर उनको फोन करने का कहेंगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आपके ख्याल में वो कहां होंगी?
तुम्हारे ख्याल में अगर मैं जानता तो इतने अरसे इंतजार करता ताकि मेरी बहन का ये हाल हो?
या खुदा, मैं समझता था सिर्फ मैं आपसे दूर हूं।
जनरल ने तुम्हारी मां के साथ बहुत बुरा किया पुलाद, बहुत बुरा।
शायद इसीलिए कभी खुश नहीं रहे, हमेशा वापस आने की आरजू करते रहे, लेकिन डरते थे। मेरा ईरानी पासपोर्ट भी उन्होंने ही बनवाया था, कह रहे थे कि अपनी गली कोचों की बहुत याद आती है, एक दिन दोनों वापस जाएंगे। अब कहाँ हैं? दूसरों के साथ इतना बुरा किया, अब अंजाम क्या हुआ? मुझ पर भरोसा क्यों नहीं हाजी यूनुस? मुझे बताएं, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताएं।
ये क्या कह रहे हो बेटा?
अगर मैं आपके बेटे की जगह हूं तो आपसे एतमाद की तवक्को रखता हूं।
किसे तुम पर एतमाद नहीं है?
आप समझते हैं कि प्रेस की मुखबरी मैंने की है।
तुम्हें कहां से पता चला कि प्रेस की मुखबरी हुई है?
परेशान ना हो, पुरानी खबर है। पुरानी खबर किसी जासूस के काम की नहीं होती।
तुम मेरा दिल दुखा रहे हो बहराम, बताओ क्या हुआ है?
आपने क्यों मुझे बताने पर पाबंदी लगाई है? क्या दोबारा मेरे बाप की वजह से? शादी के 2 साल बाद तक सालार मुझ पर शक करते थे क्योंकि मैं जनरल का बेटा था। बहुत बाद में उन्हें यकीन आया कि मैं जासूस नहीं हूं। आपने भी हमेशा मेरी हिमायत की, लेकिन
अब मैं खुदा भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं बहराम। बहराम, तुम्हारे बाप को तुमसे नफरत हो गई है क्योंकि तुमने उसकी बात नहीं मानी। मैं ये भी जानता हूं कि हमारे कामों से बाखबर है।
तो ये कहना चाहते हैं कि कारखाने की मुखबिर उन्होंने की है?
शायद। बहराम, तुम्हें अपने बाप के आमाल की वजह से खुद को मलामत नहीं करनी चाहिए। हम दोनों जानते हैं कि वो गलत रास्ते पर हैं। वो समझते हैं कि मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों जो इस पार खड़े हैं जानते हैं कि अपने हम वतनों को मारना वतन की खिदमत नहीं है।
जब मैंने सुदाबा से शादी की तो कसम खाई कि मेरे वालिद हाजी यूनुस हैं, जनरल मर्जबान नहीं।
जानता हूं, इसीलिए तुम्हें सालार जितना चाहता हूं, लेकिन मुझसे शिकवा मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे कामों में खुद को फंसाऊं।
मुझे समझ में नहीं आ रही बात, क्यों आखिर?
देखो, जनरल इस वक्त जख्मी सांप की तरह है। अगर फंस गए और उनको पता चला कि तुम भी दखील हो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुका हूं, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे नवासों का क्या होगा, सौदाबा का क्या बनेगा? तुम्हारे ख्याल में मैं पहले ही दिन क्यों इस शादी का मुखालिफ था?
वो ये काम नहीं करेंगे।
क्या कहूं, शायद तुम सही कह रहे हो, शायद वो तुम्हारे साथ कुछ ना करना चाहते, लेकिन बहरहाल इस दास्तान का अंजाम अच्छा नहीं होगा।
मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं।
हमारा रास्ता तवील है बहराम, आशिकों के सफर में खतरे भी होते हैं और हादसे भी। अगर तुम किसी दिन गिरफ्तार हुए और वो अपनी पिदरी मोहब्बत की वजह से तुम्हें सजा ना दे सके तो खुद उसकी सजा पाएगा। तुम तो उसकी तरह नहीं बन सकते। बन सकते हो? तुम तो उसको शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहते, चाहते हो? हम आखिरकार एक दिन कामयाब हो जाएंगे और उस दिन उसको अपने गुनाहों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, अभी नहीं।
लेकिन यह तो कोई वजह नहीं हुई।
मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, जानता हूं कि क्या कह रहा हूं। बहराम, तुम्हें इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए। सौदाबा के दिल की खातिर ही सही मेरी बात, मत ठुकराओ मेरी बात।
माँ और बेटी की तबीयत कैसी है?
माँ ठीक है और बच्ची सो रही है।
मेरी छोटी परी, बाप के घर की बरकत। तुम्हारे ख्याल में इसका नाम क्या रखें? मर्जिया ठीक है?
नहीं, डरती हूं कि मेरी माँ का नाम अब्बू को गमगीन ना बना दे। मेहरबानो कैसा रहेगा?
मेहरबानो क्यों?
क्योंकि नाम भी प्यारा है और माने भी अच्छे हैं।
नहीं, कोई और नाम रखते हैं। सौदाबा कैसा रहेगा?
नहीं, इस तरह तो घर में लड़ाई हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसको बुला रहा है। आप अपनी अम्मी का नाम क्यों नहीं रखने दे रहे?
डरता हूं कि उसकी आदतें मेहरबानों जैसी हो जाएंगी।
बहराम, इतने बुरे मत बने, आपकी अम्मी की आदत बुरी तो नहीं है।
अरे मजाक कर रहा था
बहराम।
मैं नहीं चाहता कि वो ये नाम सुनकर ये सोचें कि
हम उनकी हमदर्दी लेना चाहते हैं।
हाँ शायद।
अच्छा तो क्या हुआ? बहरहाल वो हमारे बड़े हैं।
हाँ, जुनूस कह रहे थे कि तुम राजी नहीं हो कि मैं उनके साथ ताउन करूं। तुमने उसे कुछ कहा है क्या?
अगर कहूं कि राजी हूं तो झूठ होगा, लेकिन नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, खुद ही समझ गए।
मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वालिद मेरे
साथ। छोड़िए इन बातों को, सिर्फ ये बताएं कि इस छोटी परी का नाम क्या रखें।
गुलरुख। ये कैसा रहेगा?
गुलरुख, खूबसूरत नाम है। अपना नाम पसंद है छोटी परी?
अम्मी,
मेरी जान, जानते हो कितने साल इस लफ्ज के सुनने को तरसती रही, कितना इंतजार किया कि कोई मुझे अम्मी बुलाए। सख्त दिन थे, बहुत सख्त,
लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरे पास हो।
आप ठीक हैं?
महसूस होता है कि जिंदगी में कभी भी इससे बेहतर नहीं रही, लेकिन इसलिए नहीं कि देख रही हूं। काश तुम्हारे वालिद भी यहां होते, उन्हें कितना अच्छा लगता।
मैं आपसे कुछ कहने आया हूं।
अपनी बहनों के हवाले से मैं कल ही समझ गई थी, अगरचे ठीक तरह से देख नहीं सकती थी, लेकिन तुम्हारी आवाज से, तुम्हारे रोने से तुम बिल्कुल अपने बाप पे गए हो। उनके साथ क्या हुआ है?
मुझे कुछ नहीं मालूम। जब से होश संभाला है फ्रांस में था, मेहरबानों और दादा के साथ। मेरी कभी भी कोई बहन नहीं रही, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया मुझे।
मैंने तुम में से किसी का भी बचपन नहीं देखा। जिंदगी के बेहतरीन साल फिराक में गुजर गए। ना तुम्हारे स्कूल जाने का पहला दिन, ना पहली दफा फर्स्ट आने का दिन, पहली दफा सर फूटने का, पहली दफा आशिक आशिक होने का, फारिगुल तहसील होने का दिन, मैंने कोई दिन नहीं देखा। लेकिन हमेशा हमेशा दिल में तसव्वुर करती थी कि कहाँ है, क्या कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों औलाद बेटा, अब भी बेटा, अब भी मुझे यकीन है कि तुम्हारी बहन जहां भी होंगी अच्छी होंगी और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही होंगी।
आपसे वादा करता हूं कि उनको ढूंढ निकालूंगा किसी भी कीमत पे।
मुझे यकीन है कि ढूंढ निकालोगे। जानती हूं एक दिन फिर हम सब एक दूसरे के साथ होंगे। वो दिन दूर नहीं है मेरी जान।
महताब जान, सलाम। कितने टाइम पर आई हो?
वालेकुम अस्सलाम, माफ कीजिए, आज पहला दिन था, लेकिन वादा करती हूँ कि हमेशा टाइम पे आऊंगी।
खुदा करे, मेरा भाई मोहम्मद अभी भी काम पे गया, मुझे भी अस्पताल जाना है। तुम रह जाओगी और मेरी अम्मी, उनका बहुत ख्याल रखना, समझी? ये लो, ये मेरे भाई का फोन नंबर है, मोबाइल का भी नंबर और कारखाने का भी, मेरा और अस्पताल का नंबर भी है। अगर खुदा न खास्ता कोई मसला
पेश नहीं आएगा, मुतमईन रहें।
ठीक है, अलबत्ता मैं दिन में किसी टाइम पर भी आ जाऊंगी, अगर नहीं आई तो
जब जी चाहिए आ जाइए, यकीन रखिए मैं उनसे आंख नहीं हटाऊंगी।
ठीक है, उनका नाश्ता तैयार करके फ्रिज में रख दिया है, बस ख्याल रखना खट्टी पनीर नहीं देना, चाय में भी ज्यादा मीठा नहीं डालना क्योंकि शुगर लेवल थोड़ा ऊपर है, मीठा ठीक नहीं है, और कायदतन आधे घंटे तक उठ जाना चाहिए, अगर नहीं उठी तो तुम उन्हें नहीं उठाना। और ये कि
डॉक्टर साहिबा आप जाएं, फिक्र ना करें।
देखो महताब, मेरे ख्याल से बेहतर है मैं खुद ही उनको नाश्ता खिलाऊं, क्योंकि पता नहीं, तुम्हें तो जानती नहीं है, शायद कुछ ना खाएं, ये पहला दिन है, मैं उनको अकेला छोड़ रही हूँ ना, मैं आज खुद ही रह लेती हूँ।
साहिबा कसम से वादा कहती हूँ कि उनका खूब ख्याल रखूंगी।
ठीक है, देखो उनकी गोलियां पहली दराज में रखती हैं, तादाद और टाइम भी फ्रिज के दरवाजे पे लिखती है, ख्याल रहे। दोपहर के खाने के लिए
डॉक्टर साहिबा आपको देर हो जाएगी, अभी तो सिर्फ 9 बज रहे हैं, खाने के लिए फोन करके पूछ लूंगी।
ठीक है।
चाहे तो मैं हर आधे घंटे के बाद आपको फोन करती हूँ।
क्या? हाँ हाँ वो
आप जाइए, जानती हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अभी नहीं जाएंगी तो फिर कभी भी उनको किसी और के साथ छोड़ने को दिल नहीं चाहेगा, तो मेरी मुलाजमत चली जाएगी। खुदा के लिए जाइए, मैं फोन करूँगी।
ठीक है, खुदा हाफिज़।